tam şimdi. Şahada Cenzeri 1984 Hazret Kımırlı Maya ave, lekin maya ke vash nahi hona. Maya ka kaam hai aana, aur aapka kaam hai maya ko jeetna. Uske prabhav mein nahi aana hai. Apne prabhav se maya ko bhagana hai. Na ki maya ke prabhav mein aana hai. To samjha, kaun si prize leni hai? Ek bhi vigna mein aaya, to prize nahi. Kyunki saathi ho na. सभी को एक दो को साथ देते हुए अपने घर चलना है ना, इसके लिए सदा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली हो जो वातावरण भी सर्व आत्माओं के लिए सदा सहयोगी बन जाए. शक्तिशाली वातावरण कमजोर को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी होता है. जैसे किला बांधा जाता है ना, किला क्यों बांधते हैं? कि प्रजा भी किले के अंदर सेफ रहे. एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते थे. आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए कौन सा किला बनाओ? कौन सा किला बनाओ? स्वयं के लिए, अन्य आत्माओं के लिए सेफ्टी का किला बनाओ. कौन सा किला बनाओ? शक्तिशाली किला बनाओ और शुभ भावना का किला बनाओ. योग का किला बनाओ, श्रेष्ठ संकल्प का किला बनाओ और श्रेष्ठ वृत्ति का किला और वायुमंडल का किला और पवित्रता का किला और ऑरा का किला और वाइब्रेशंस का किला और धारणा का किला, शुभ संकल्प का किला और बाबा की छत्र छाया का किला, संयोग का किला और संगठन का किला और शांति का किला और दृढ़ संकल्प का किला और परिवर्तन का किला और एक रस स्थिति का किला और सेवा का किला. कितने किले हो गए? आप सभी भी स्वयं के लिए, आप सभी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला का किला बांधो. कौन सा किला? ज्वाला का किला. याद के शक्ति की ज्वाला हो. अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 1984. माया आवे, लेकिन माया के वश नहीं होना है. माया का काम है आना और आपका काम है माया को भगाना. जिसके प्रभाव में उसके प्रभाव में नहीं आना. अपने प्रभाव से माया को भगाना, ना कि माया के प्रभाव में आना. तो समझा, कौन सी प्राइज लेनी है? एक भी विघ्न में आया तो प्राइज नहीं. क्योंकि साथी होना, सभी को एक दो को साथ देते हुए अपने घर चलना है ना, इसके लिए सदा सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा शक्तिशाली हो. कैसा शक्तिशाली हो? सेवा केंद्र का वातावरण कैसा शक्तिशाली हो? जो कमजोर को भी शक्तिशाली बना दे. ऐसा शक्तिशाली हो जो माया को आने ना दे. ऐसा शक्तिशाली हो जो जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे. ऐसा शक्तिशाली हो जो दूसरों को शक्तिशाली बना दे. कहां से आवाज आई? बाहर से. ऐसा शक्तिशाली हो जो बाहर वाले भी अंदर खींच के आ जाए. ऐसा शक्तिशाली हो जो कोई जाने ना पाया. अगर जाने की किसी ने कोशिश की तो, अगर जाने की किसी ने कोशिश की तो एक वरदान था कभी साकार मुरली में. इस यज्ञ में क्या कर दो? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट लगा दो वाइब्रेशन से योग का, अगर कोई जाने की कोशिश की किसने तो शॉक लग के अंदर, ऐसा शक्तिशाली वातावरण हो जाओ। वातावरण भी सर्वात्माओं के लिए सदा सहयोगी बन जाए। शक्तिशाली वातावरण कमजोर को भी शक्तिशाली बनाने में सहयोगी होता है। जैसे किला बांधा जाता है ना, किला क्यों बांधते हैं? कि प्रजा भी किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए कौन सा किला बांधो? कैसा होता है ये ज्वाला का किला? याद के शक्ति की ज्वाला हो। अव्यक्त मुरली, 14th January 1984। सेवा केंद्र का वातावरण क्या कर दो? शक्तिशाली बना दो। हाउ टू मेक द एटमॉस्फेयर ऑफ सेंटर पावरफुल, ये है प्रश्न। सेंटर का, सेवा केंद्र का वातावरण शक्तिशाली कैसे बनाया जाए? सबसे पहले बहनों की तरफ से उत्तर आएगा, बाद में स्टूडेंट्स की तरफ। पहले टीचर्स बताएंगे कि सेंटर का वातावरण, आश्रम का वातावरण, सेवा केंद्र का वातावरण, मिनी मधुबन का वातावरण, भगवान ने जो तीर्थ रचे हैं संगम पर, उनका वातावरण शक्तिशाली कैसे हो? पहले टीचर्स की तरफ से क्या किया जाए कि वातावरण बहुत शक्तिशाली हो जाए? क्या करें आरती बहन? क्या किया जाए सेंटर को लाइट हाउस और नाइट हाउस कैसे बनाए? उसी का प्रश्न, उसी का उत्तर चाहिए। क्या करें प्रैक्टिकल वो बताओ। पालना और वातावरण शक्तिशाली हो जाए। वातावरण में एंट्री करते ही शक्ति का अनुभव। कमजोर आए तो उसे लगे पता नहीं कहां आ गया मैं। कमजोर में भी जो व्यक्ति आज तक जिसने जो भी संकल्प किए कभी किसी संकल्प को पूरा नहीं कर पाया, ऐसा व्यक्ति भी आ जाए तो उसमें आत्मविश्वास भर जाए कि मैं यहां पर बैठकर कोई संकल्प करूं तो शायद ये पूरा होगा। ऐसा वातावरण क्या किया जाए? स्थिति पावरफुल और सबके प्रति स्नेह और संगठित योग और शुभ कामना, शुभ भावना और बाबा को क्या करना? बाबा को कौन पकड़ के रखेगा? और सहयोग से और संकल्प शक्ति दृढ़ हो और संगठन में सेवा हो, व्यर्थ और वेस्ट से मुक्त हो और अखंड योग हो और मतभेद ना हो और शुद्ध वाइब्रेशंस हो और घृणा ना हो किसी के प्रति। अच्छा, कल की मुरली याद है ना? घृणा को क्या करना है? प्रेम में परिवर्तन करना है। कैसे होगी प्रेम में? योग की अग्नि से। हृदय में यदि घृणा भरी है तो उससे स्वयं को मुक्त करना है, क्योंकि घृणा में स्ट्रॉन्ग निगेटिव वाइब्रेशंस है, बहुत पावरफुल निगेटिव प्रकंपन है। घृणा शब्द में ही प्रकंपन है निगेटिविटी के। संसार में जितने युद्ध हुए क्यों हुए? एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म पर क्यों क्योंकि सभी धर्म कहीं ना कहीं घृणा पर बिखड़े हैं। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले से घृणा करते हैं, अपने को ऊंचा समझते हैं, तो घृणा ना हो। और अभी अभी हम सोच रहे थे तो कुछ पॉइंट इसकी निकाली है, सोल्ड SOLD कार CR एंड ATM सबसे पहले सेंटर का वातावरण शक्तिशाली कैसे बनाए, उसके लिए ये शब्द को याद रखना है, सोल्ड कार एंड ATM। सबसे पहले S अर्थात साइलेंस। जिस सेंटर के वातावरण में साइलेंस नहीं है, टिक 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 चल रही है, निरंतर टॉक्स चल रही है, निरंतर बातें चल रही है, वहां पर मौन नहीं है, वहां शक्तिशाली वातावरण हो ही नहीं सकता। अब हम केवल सेंटर की बात नहीं कर रहे, चाहे मधुबन, चाहे सेवा केंद्र, चाहे घर गृहस्थी, तीनों का ही वातावरण या ऑफिस, चौथा ऑफिस भी हो सकता है, अगर वातावरण में, अगर व्यक्ति में साइलेंस नहीं, वातावरण में साइलेंस नहीं, हर एक बात ही करना चाहता है और बहुत बात करना चाहता है, तो वातावरण शक्तिशाली नहीं हो सकता है। शक्तिशाली वातावरण के लिए क्या चाहिए? साइलेंस। किसी दूर मंदिर में जाओ जो पहाड़ी पर है, हरियाली के बीच, वहां जाते ही क्या अनुभव होता है? शक्ति का अनुभव होता है। क्यों? कोई कुछ कर नहीं रहा है, मंदिर खाली है, कोई भक्त भी नहीं है, वहां पे पुजारी भी नहीं है, केवल साइलेंस है। किसी सेवा केंद्र पर जाओ और वहां पर एब्सोल्यूट साइलेंस है, एक या दो लोग है परंतु वार्तालाप बहुत कम है दोनों के बीच। चाहे मधुबन डिपार्टमेंट, चाहे सेवा केंद्र, सेवा केंद्र में भी अलग अलग कमरे, चाहे बेडरूम, चाहे किचन, चाहे हॉल, कोई भी वातावरण में जब तक मौन नहीं, तीन शब्द है, मन, ओ से होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का एक अर्थ होता है आकर्षित, एन से होता है नकार। जब मन इस संसार की किसी भी वस्तु की तरफ आकर्षित ना हो और स्वयं में स्थित है, वो चित्त की दशा, वो चित्त की अवस्था मौन की अवस्था है। तो पहला है साइलेंस, दूसरा क्या था? ओ, ओपननेस। एक व्यक्ति, जितने लोग वहां रहते उनके बीच में बहुत कुछ छिपा छिपा ना हो, क्या हो? ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी जीवन हो हर एक का। हर एक के जीवन में ऐसा ना हो कि हमने बहुत कुछ छिपा के रखा है, हमारे जीवन में ये बात है वो उसको पता ना चले। ऐसा जहां होता है, वो तीसरा व्यक्ति जब उस वातावरण में आता है, उसे भी पता चल जाता है कि कुछ तो यहाँ छिपाया हुआ है, सीक्रेट है। जहां पर सब कुछ पारदर्शी हो, जीवन ही पारदर्शी है, जीवन में ओपननेस है, फ्रैंकनेस है, तो एक ओपननेस का कि जो बात है वो सेंटर पर होनी चाहिए, मधुबन में होनी चाहिए। पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ क्या हो जाए? जैसे एक हो जाए, खुली किताब हो जीवन, कुछ छिपाने को उसमें है ही नहीं, कुछ उसमें छिपाने को है ही नहीं, ऐसा हो जाए। अगर मन में बहुत सारी बातें हैं जो हमने छिपा के रखी है, उनको पहले न्यूट्रलाइज कर देना है, जो कि निमित्त है या जिनमें हमें फेथ है, या अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो भगवान तो है, उसको पूरा बताकर क्लीन कर देना है, उसको स्वच्छ कर देना है हृदय को, ये कार्य करना है। एल, सेवा केंद्र पर लव गैदरिंग, स्नेह मिलन होता रहे, महल अर्थात लव गैदरिंग जिसको कहते हैं, सेवा केंद्र पर बार बार हर हफ्ते कुछ न कुछ होता रहे, उससे क्या हो जाएगा, यूनिटी का भी एक वातावरण रहेगा अगर केवल ब्राह्मण उसमें आ रहे तो। अगर बाहर के लोग जो स्नेही है, जो सहयोगी है, जो एक बार मधुबन आके गए हैं बाद में कभी नहीं आए, उनको वापस उसमें बुलाना है। जो एक बार जिन्होंने कुछ मधुबन से कोई भाई गया था और कोई प्रोग्राम किया था उसमें आए थे बाद में कभी नहीं आए, उन लोगों को बुलाना। जो एक बार हमारे किसी सेवा केंद्र के प्रोग्राम में आए थे बाद में नहीं आए, जो मधुबन में कभी कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे बाद में आना छोड़ दिया, जो कभी शिविर में आए थे बाद में कभी नहीं आए, सबका क्या करना है, स्नेह मिलन, लव गैदरिंग। डी अर्थात डिसिप्लिन। हर सेवा केंद्र पर क्या चाहिए, डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन। जो निमित्त है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे सबको लेकर चलना है। जैसा हेड होगा वैसे ही सब डिपार्टमेंट होता है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। यदि इंचार्ज है उसको अगर तीव्र पुरुषार्थ में, योग में और तपस्या में इंटरेस्ट नहीं है तो स्टूडेंट्स को भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो डिसिप्लिन। और एक बात, अपना डिसिप्लिन हम खुद सेट करें, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी। अमृत वेले का डिसिप्लिन, आने टाइम पे आने का डिसिप्लिन, सेवाओं का डिसिप्लिन, हर प्रकार का डिसिप्लिन, अनुशासन। सी अर्थात, सी से क्या होगा, नहीं हमें गुण नहीं चाहिए, वो गुणों वाली लिस्ट नहीं बताओ। सी से क्या हो सकता है, कनेक्शन और केयर और क्लैरिटी, क्लीनलीनेस। सेंटर पर स्थूल क्लीनलीनेस, सी अर्थात क्लीनलीनेस। ये एक अलग प्रकार का पॉइंट है, हम यहां पर मन की बात नहीं कर रहे, स्थूल जो कि वस्तुएं रखी हुई है, सामान जो रखा हुआ है कैसा हो, क्लीन हो, सफाई हो वहां पर। वो केवल अब सेवा केंद्र की बात नहीं, अपने घर की भी बात, वो केवल अपने घर की भी बात नहीं, अगर सरकारी किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वो भी ये नहीं समझना ये हमारा काम नहीं है। जहां पर, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उसको हमेशा क्लीनलीनेस पसंद आती है, हमेशा। वो ये नहीं कह सकता कि ये तो ऐसा ही है। जहां पर भी हम काम करते हैं, ऑफिस चाहे किचन, कोई भी काम हो गया, भोजन बना के हो गया, वैसे ही छोड़ दिया, वो कहते हैं ना जो झूठे बर्तन होते हैं अगर वैसे ही छोड़ दे तो रात भर रोते हैं, बर्तन रोते हैं। इसके लिए क्लीनलीनेस। ए अर्थात अलौकिकता। अलौकिकता, उसका विरोध का शब्द कौन सा है, लौकिकता। लौकिकता का वातावरण ना हो, लौकिक चर्चाएं, लौकिक जो भी चीजें हैं वैसा ना हो, वो परिवर्तन हो जाए, लोगों को लगे है उसमें एंट्री करते ही कि ये साधारण जैसा घर नहीं है। जैसे बाहर के घरों में हम जाते हैं लौकिक वातावरण होता है, वहां पर लौकिकता की याद आती है, लौकिक संबंधों की याद आती है। यहां आते ही क्या हो जाए, अपना घर ही आश्रम बन जाए यदि हम घर में रहते हैं। तो अलौकिकता। आर अर्थात रिलेशनशिप। चाहे मधुबन में रहते हुए, चाहे सेवा केंद्र पर रहते हुए, चाहे घर में रहते हुए, सभी संबंधों में दो चीजें होनी चाहिए, एक है मधुरता और दूसरी है डिटैचमेंट, स्वीटनेस और डिटैचमेंट, संपूर्ण डिटैच। जितना डिटैचमेंट होगी उतना ही वो संबंध स्वीट होगा। जिस संबंध में जितनी अटैचमेंट है, जितनी फैमिलियरिटी है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इंग्लिश में कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जितना दो व्यक्ति समीप आते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं और फिर एक दूसरे की कमियां भी देखने लगते हैं और फिर घृणा, एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होती है। इसलिए संबंधों में क्या चाहिए सुशील भाई? डिटैचमेंट। क्लास पूरा हुआ, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। कमलेश भाई रिकॉर्डिंग पूरी हुई और क्लास भेज दिया, और क्लास अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। किसी से भी तो किसी से भी संबंधों में अटैचमेंट ना हो, लगाव झुकाव हो, ये जो है बहुत बड़ा उसका विस्तार है, इतना बड़ा विस्तार है उसका। इसके लिए जो भी हमारे संबंध है उसमें जितनी अधिक डिटैचमेंट होगी, हर एक को टाइम देना है, स्पेस चाहिए हर एक को सोचने के लिए। बार बार बैठ के डिस्कशन करते रहे, दो व्यक्तियों के बीच में झगड़े तो बार बार बैठ के चर्चा करते, बार बार चर्चा करते, और हर चर्चा से हर बात बिगड़ती है। जैसे कोई युगल है, दोनों में अनबन है, कितनी बार बैठते और हर बार जब बैठते उसमें और झगड़े होते। कभी कभी क्या चाहिए? साइलेंस, थोड़ी सी मानसिक इमोशनल डिटैचमेंट। जरूरी नहीं है कि हर जो संकल्प, हर जो भाव मन में व्यक्त हुआ फटाफट मोबाइल लिया और उसको एसएमएस कर दिया, आवश्यकता है क्या हर भाव का? क्योंकि भाव इतने बदल रहे, कभी कभी लगता है इसको माफ कर दो, दूसरे दिन लगता है नहीं इसको वार्निंग दे दो, कभी कभी लगता है नहीं इसको बता दो तुमने बहुत बड़ी गलती की, कभी कभी लगता है खुद सॉरी बोल दो छोड़ो। कितने भाव बदलते हैं दो व्यक्तियों का जब झगड़ा होता है तो। रात को कुछ लगता है, सुबह कुछ लगता है, दोपहर को कुछ लगता है, शाम को कुछ लगता है, और जब मिलते हैं तो कुछ और ही करते हैं जो सोचा ही नहीं था। क्या चाहिए? डिटैच्ड। सेवा केंद्र में रहने वालों के लिए भी बाबा कहते हैं, क्या रहे आपस में? डिटैचमेंट ना हो। कल की अव्यक्त, संडे की अव्यक्त मुरली, टीचर्स से मुलाकात। प्यार यदि नहीं है सेवा में तो ठीक नहीं, तो प्यार में फंस कर भी सेवा नहीं करनी है और कम प्यार से भी सेवा नहीं करनी है। किसी के प्यार में भी फंस के सेवा नहीं और सेवा से भी कम प्यार नहीं, ये दोनों ही चीजें चाहिए तो सफलता होगी। तो दोनों ही चीजें चाहिए, मतलब प्यार चाहिए सेवा से और किसी में फंसना न, ऐसी सेवा तो सफलता होगी। तो काम किस में करना है सबको? रिलेशंस पर। हमारे घर वाले, घर के जितने लोग हैं उनके साथ कैसे संबंध है, घर के बाहर जो लोग हैं उनके साथ कैसे संबंध है, सेवा केंद्र है वहां कैसे संबंध है, सेवा केंद्र में रहने वालों के आपस में कैसे संबंध है, सेवा केंद्र के मधुवन में कैसे संबंध है, मधुवन वालों के आपस में कैसे संबंध है, कहीं मोह तो नहीं, कहीं अटैचमेंट तो नहीं। ये सब जब होगा तो कल की, परसों की मुरली, कर्म बंधन, उसकी याद, सब कुछ होगा फिर। और ए, दूसरा ए अर्थात अटेंशन और अलर्टनेस और अवेयरनेस और एटीट्यूड, और तो इसको हम लेते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें चाहिए। एटमॉस्फेयर ऑफ लव, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन, एटमॉस्फेयर ऑफ हैप्पीनेस, एटमॉस्फेयर ऑफ पीस। सेंटर के वातावरण में, मधुबन के वातावरण में, घर के वातावरण में, ऑफिस के वातावरण में क्या क्या चाहिए? पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। पॉजिटिविटी रामायण में दिखाया है कि राम और लक्ष्मण जा रहे हैं और अचानक एक स्थान पर प्रवेश करते हैं, तो लक्ष्मण उस स्थान पर जाता है और वहां जाते ही लक्ष्मण के मन में निगेटिव विचार आने लगते हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ राम के साथ, वनवास तो राम को हुआ है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं यहां पर, मुझे तो राज्य करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आने लगते हैं, बहुत निगेटिव विचार। तो वो फिर वापस आता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर जाता है उस स्थान पर, फिर निगेटिव विचार आने लगते हैं। फिर वो पूछता है श्री राम से कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो राम उसको बताते हैं कि स्थान पर बहुत समय पहले दो दैत्य रहते थे भाई, हमेशा लड़ते रहते थे, लड़ लड़ के एक दिन यही मर गए थे। तो वाइब्रेशंस एटमॉस्फेयर में क्या हो, पॉजिटिविटी एटमॉस्फेयर में क्या हो, पॉजिटिव एटीट्यूड एटमॉस्फेयर में क्या हो, थैंकफुलनेस का एटीट्यूड एटमॉस्फेयर में क्या हो, एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेज, एटमॉस्फेयर ऑफ मोटिवेशन, एक दूसरे की क्या करे, प्रशंसा करे, महिमा करे, गुणगान करे, गुणानुवाद, गिराए नहीं एक दूसरे को, निंदा नहीं। तो क्या चाहिए एटमॉस्फेयर में, पॉजिटिविटी। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, और उसके लिए सबसे पहले तो हृदय में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, प्रेम का एटमॉस्फेयर अपने अंदर, ताकि वो प्रेम का जो प्रकंपन अंदर है वही बाहर फैलेंगे फिर। तो ये उसके बाद एन, एन अर्थात न्यू, न्यूनेस, न्यूनेस कौन से न्यू प्लानिंग, आर हो गया रिलेशनशिप में, ये चलो एन, एन एन अर्थात न्यू प्लान्स, न्यू प्लान्स, कौन से प्लान, सेवा के प्लान और सेल्फ प्रोग्रेस के प्लान। सेंटर पर क्या करना है, नए नए प्लान बनाने हैं सेवा के हर दिन। ऐसा नहीं कि जो प्लान हो गया हो गया, अभी इसमें क्या नवीनता करे, जो करना था सारे सब तो सेवा कर ली, अब कुछ रहा ही नहीं बाकी। क्या भगवान की संपदा जो इतनी बड़ी है उसमें अकाल क्यों, चिंतन का अकाल, आइडियाज का अकाल। कोई कहते अभी इसमें क्या बोले, संतुष्टता का किसी को टॉपिक दिया गया तो वो कहता अभी क्या बोलू, कितने सारे महारथियों ने संतुष्टता पर बोल चुके हैं, सारी क्लासेस हो चुकी है, बाबा सब कुछ बोल चुके, अभी कुछ रहा ही नहीं है बोलने के लिए, क्या बोलू अभी संतुष्टता के ऊपर, टॉपिक तो है पर बोलू क्या, सब हो गया है बोल के। वर्षा हो रही है उसमें अकाल कैसा। तो न्यू प्लान बनाना है किसके लिए, सेवा केंद्र की बहने बनाएंगी अपने सेवाओं के लिए, हम भी बनाएंगे, और साथ साथ बनाएंगे सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, स्व उन्नति का न्यू प्लान। आज तक हजारों बना चुके थे, कुछ सफल हुए कुछ नहीं, परंतु आज फिर नया बनाना है, हारना नहीं है। एक संस्कार है जो बार बार हराता है, वो हो सकता है सेंसिटिविटी, किसी ने कुछ कहा आंसू, बहुत सेंसिटिव, किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया रोना, ये एक संस्कार है। इस पर बहुत काम किया, एक साल से काम कर रहे, दो साल से काम किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी आंसू ऐसे है कि सूखते ही नहीं। क्यों इतना स्वयं को हमने सशक्त नहीं बनाया है, जरूर ऐसी कोई ज्ञान की पॉइंट है जो अब तक हम तक अब तक नहीं पहुंची है, और वो पॉइंट है, जब हम पहुंच जाएंगे उस पॉइंट तक तो ये संस्कार समाप्त होगा। खोज चालू रहे, खोज जारी रहे, चिंतन जारी रहे। तो न्यू प्लान किसके लिए, सेल्फ प्रोग्रेस, और दूसरा सर्विस। हर एक इंडिविजुअली ये सोचे कि मैं कौन सा प्लान बनाऊं, और वो प्लान जब तैयार हो जाए तो जो निमित्त आत्मा है उसको हम बता सकते हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या इन इन आत्माओं की भी सेवा की जा सकती है जिन तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है। ऐसी आत्माएं हैं कुछ हमारे शहर में जिनकी अब तक हमने सेवा की ही नहीं है। कौन, भूतपूर्व कौन, भूतपूर्व बीके, हाँ ये एक बहुत बड़ी सेवा जो रही हुई है, जो बीके थे और ज्ञान को छोड़कर चले गए, वो तो कुछ भी कहे, परंतु हमें पता है सत्य क्या है। उनकी सेवा करना अर्थात शब्द से ही करना जरूरी थोड़ी ना, हम क्या सोच रहे हैं उनको, उनका आह्वान करना अमृत वेले, उनको पुकारना। वो क्यों छोड़ के गए, जरूर कुछ तो निगेटिव देखा, क्यों छोड़ के गए, जरूर हर्ट हुए इसके लिए गए, जरूर किसी बीके की ऐसी चलन देख ली, किसी व्यक्ति के नाराज होकर चले गए, उनकी ओर से हम क्षमा मांगे मनसा, तो शायद एक दिन वापस आ जाएंगे। तो जो भूतपूर्व बीके, एक्स बीके, जो भी ज्ञान छोड़कर चले गए, उनको पुनः लाना ये बहुत बड़ा काम है जो रहा हुआ है। नए तो आ जाएंगे, पर ये जो है इतने आसानी से नहीं आते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। मधुबन में कई बार आ चुके हैं, बाबा से मिल चुके हैं, दादियों से मिल चुके हैं, मुरलिया सुन चुकी है, सारा ज्ञान उनको पता है। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है छोड़ने का, किसी भी कारण से शायद, तब उनको पुनः लाना ये एक अपूर्ण कर्तव्यों में से हमारा एक कर्तव्य है, ब्राह्मणों के अपूर्ण कर्तव्य, इसकी भी कभी हमने चर्चा की थी। और कहां थे हम, एन डी डी फॉर, हमें गुण गुण नहीं बताओ, ओ एबीसीडी वाले गुण नहीं, डी फॉर डेंजर, डी फॉर ड्रामा, नहीं हमारा प्रश्न है सेंटर का वातावरण कैसे शक्तिशाली बने, धारणा डिस्ट्रीब्यूशन, और डी फॉर डिस्कशन, बाकी सारी चीजें तो है, परंतु ज्ञान का डिस्कशन। सेवा केंद्र पर मुरली तो सुनाई जाती है, पढ़ी जाती है, परंतु ज्ञान की चर्चा ये थोड़ी कम है। सेवा केंद्र पर ज्ञान की चर्चा हो, जैसे अभी हम, ये क्लास नहीं हो रहा है, ये डिस्कशन हो रहा है। एक दो के साथ में ज्ञान का डिस्कशन, ज्ञान चर्चा, ज्ञान सभा, ज्ञान भट्टी, ये रहा हुआ है। तो जहां नहीं होता वहां चालू किया जा सकता है। बहनें आपस में भी शाम को बैठ सकते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो अपने घर में ही ज्ञान चर्चा चालू कर सकते हैं। यदि युगल है और दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, तो रात को एक टाइम फिक्स करना है, 9 से 9:30 बजे तक या 8:30 से 9:30 बजे तक कोई भी एक किताब लेनी है। जैसे यहाँ पर ये स्पार्क की किताब का चल रहा है, ज्वालामुखी योग, उसी तरह स्पार्क से कोई भी एक छोटी सी किताब ले ले, और डिस्कशन के लिए केवल दो लोगों की आवश्यकता है। दो लोग बैठे, एक दिन एक पढ़े, दूसरे दिन दूसरा पढ़े, और जो पढ़ना है उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करके आए, जिसे पढ़ना है। दो बहने या दो भाई मिलकर, चर्चा बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये ज्ञान बिना चर्चा के स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि इतनी सारी उसमें बातें हैं, एक एक महावाक्य इतना गूढ़ है कि क्लियर नहीं होता है। इसके लिए क्या चाहिए, ज्ञान की चर्चा। नेक्स्ट कहां आगे, डी ए, ए फॉर, ऐसे और क्या हो सकता है, एटीट्यूड, आत्मिक स्थिति, और एक्टिवनेस, और आत्मा, आत्मा का क्या, एडजस्टमेंट, हाँ ये सभी बातें एक्सेप्टेड है। एडजस्टमेंट एक बहुत अच्छा गुण है, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट। हमें दूसरी आत्मा को वो जैसी है जो है उसको एक्सेप्ट करना है। हमने आज तक अपने चित्त में उसे रिजेक्ट कर रखा है, ये इसकी बात ही गलत है, रिजेक्ट करके रखा है। एक्सेप्ट करना है उस आत्मा को सबसे पहले, उसके जो भी संस्कार है उन संस्कारों के साथ एक्सेप्ट, फिर एडजस्ट करना है स्वयं को उस वातावरण में, उस परिस्थिति में, चाहे जैसा भी वो वातावरण। घर में अब रहना वही है, दादा ने कहा है ना, स्थान बदलेगा ना, व्यक्ति बदलेंगे और ना परिस्थिति बदलेगी। तुम्हें ही बदलना है। जो बच्चे हैं वो बच्चे वही रहेंगे, जो पति है वो वही रहेगा, युगल जो है वो वही रहेगा। अब उसी के साथ चलना है, छोड़ना तो नहीं है, चलना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके चलना है। टी फॉर तपस्या, संगठित तपस्या। सेवा केंद्र पर सबसे पहले सेवा केंद्र में चालू करते हैं। सेवा केंद्र में कम से कम दो बार संगठित योग हो सभी बहनों का, सुबह एक बार और शाम को एक बार। शाम को नहीं होता तो कम से कम रात को सभी जो ज्ञान चर्चा करेंगे उसके बाद बैठकर कुछ समय के लिए योग करें, तो उस सेवा केंद्र का वातावरण शक्तिशाली हो सकता है। स्टूडेंट्स भी करें शाम को या सुबह, वो तो करते ही है, परंतु हम बात कर रहे हैं टीचर्स की। सुबह बैठकर संगठित योग, कुछ कुछ सेंटर पर स्टूडेंट्स भी आते हैं सुबह सुबह, कई सारे सेंटर्स पर नहीं आते, पर जहां नहीं आते वहां पर टीचर्स एटलीस्ट सब एक जगह आ जाए और योग करें, तो उस सेंटर का वातावरण शक्तिशाली होगा। और शाम को तो बिजी रहते हैं, तो रात को एक बार फिर से टीचर्स बैठकर योग करें। दूसरा है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स संगठन में योग करें सेंटर पर जाकर, सुबह एक बार और शाम को अगर संभव है तो। अगर शाम को संभव नहीं है तो कम से कम घर में, यदि सारे परिवार ज्ञान में चलता है तो, अगर नहीं चलता तो दूसरी बात है। और मधुबन में क्या कहेंगे, मधुबन में तो चालू ही है। कोई ऐसा समय है जहां पर बाबा के कमरे में कोई बैठा नहीं है? यहाँ निरंतर चालू ही है, इसके लिए तो यहाँ का वातावरण इतना शक्तिशाली है। वातावरण शक्तिशाली क्यों बन गया है? बाबा के कमरे में देखो, कुटिया में देखो, सुबह से मतलब जब से हम देखते कोई ना कोई बैठा ही रहता है। रात में सिक्योरिटी वाले बैठे रहते हैं 2 बजे से लेके, तो कोई ना कोई हर समय बैठा है वहां पर, तो ज्योति जगी रही है कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। तो ऐसा क्या हमारे घर का भी वातावरण बनाया जा सकता है? क्या सेवा केंद्र का बनाया जा सकता है जैसा मधुबन का है? और जो मधुबन का जैसा है उसको क्या करें? और कितना अनलिमिटेड उसमें ए से हमने दूसरा शब्द सोचा था, वो भूल गया था। एडजस्टमेंट भी राइट है, एब्सेंस। ए से बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, वो कौन सी? एब्सेंस। ए फॉर एब्सेंस ऑफ गॉसिप। सबसे पहले तो गॉसिप अर्थात गॉसिप मॉन्गरिंग, परचिंतन, व्यर्थ चिंतन, किसने क्या किया वो चिंतन, बिजनेस चिंतन, मनी माइंडेडनेस, वेस्ट, निगेटिव, एब्सेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो हम अपने घर में देखें कि हमारे घर का वातावरण योगयुक्त तो क्यों नहीं है, क्योंकि शायद उसमें ये 5 चीजें हैं जो हो रही है, स्वयं अपना निकाले। हमारे ऑफिस का वातावरण शक्तिशाली क्यों नहीं है? जाते ही वहां पर तनाव क्यों महसूस होता है? जाते ही क्यों लगता है ये लोगों के साथ हम नहीं रह सकते? जाते ही लगता है ये लोग यहां से रिजाइन करके चले जाए, ये आदमी तो बहुत अच्छा हो जाए, क्यों लगता है ऐसा? कुछ तो है, क्या उनको वो परिवर्तन हो ना हो, हमें अपने अंदर कुछ काम करने की जरूरत है। तो एब्सेंस। और कौन सी चीजें ना हो? हर एक अपने अनुभव से बता सकते हैं, घर में, सेवा केंद्र में, मधुबन में कौन सी चीजें ना हो? संसाधनों का अनावश्यक यूज, निरंतर उसमें लगे। जो कभी कहते थे हम चाहे मोबाइल सारी दुनिया ले ले हम नहीं लेंगे, वो आज मोबाइल के सागर में डूबे हुए हैं। जो कहते थे हम कभी नहीं खरीदेंगे, हमको जरूरत ही नहीं है तो संसाधन, एब्सेंस ऑफ निगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वेस्ट, एब्सेंस ऑफ गॉसिप्स, एब्सेंस ऑफ मनी माइंडेडनेस, पैसे 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 पैसे, दिन रात पैसों का चिंतन, कब कैसे बच जाए, वो तो वो ठीक है, फिजूल खर्चा ना हो, परंतु ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति होता है, वो एक बार जाता है और देखता है एक होटल पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जितना खाना है खाओ और इसका जो बिल है आपके नाती चुप करेंगे। तो एक व्यक्ति इतना खुश हो जाता है ये देखकर, अरे वाह, जितना खाना है खाओ, फाइव स्टार होटल है, रेस्टोरेंट है और नाती चुप करेंगे। पूरे अपने परिवार को लेकर जाता है वहां पर और बैठते और इतना खाते हैं और इतना खुश होता है खाते समय। और फिर उसके बाद खाना जब पूरा होता है तो उनको लगता है बस जाना है, तो वेटर बिल लेके आता है, तो इतना गुस्सा आता है उसको, इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखा है कि यहाँ पर जब कितना खाना है खाओ और बिल तो नाती चुप करेंगे, फिर ये बिल कहता, वो कहता ये तुम्हारे ग्रैंडफादर का है ये तुम्हारे दादा का बिल है तुम्हारा नहीं मनी ऑक्यूपाइड माइंड रहता है, दिन रात पैसे 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 ही सोचते रहता है। एक युगल है, अभी जो आए थे मधुबन में, तो वो बहन तो ज्ञान में है, वो भी डॉक्टर है, वो दूसरे उनके युगल है, वो भी डॉक्टर है। तो जब से वो बहन ज्ञान में आई, उसने वो प्रोफेशन छोड़ दिया, वो सेवा ही बहुत उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट है वो डॉक्टर बहन को कि सेवा ही करती रहती है। और जो युगल है वो कंप्लीट मतलब केवल पैसे 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 पैसों का ही चिंतन करते रहते हैं। तो वो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी की वजह से मेरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ है हर दिन एवरी मंथ मेरे 1.5 लाख इस ब्रह्मा कुमारी की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि पहले वो जॉब करती थी और उसने छोड़ दिया है, तो सारा दोष ब्रह्मा कुमारी। फिर है ये था ए, टी फॉर तपस्या बोल दिया, ए एम फॉर एम बता सकते हैं सेंटर का वातावरण शक्तिशाली बनाने के लिए, जो बोल दिया अलग अलग शब्दों में माइंडफुलनेस, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं ना, जागरक, जागरण स्थिति हो, जागरण की स्थिति हो, जागरण किस किस बातों के लिए, समय कौन सा चल रहा है इस बात का जागरण, आत्माभिमानी स्थिति या जागरण की अवस्था है, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, अलर्टनेस, ये सब माइंडफुलनेस में आता है। तो ये सारी ही चीजें चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेंटर का वातावरण पावरफुल बन जाएगा। एक बार रिवाइज करते और क्लास को पूरा करेंगे। सबसे पहला तो एस फॉर साइलेंस, जहां हम रहते हैं, सेवा केंद्र, सेंटर, मधुबन, घर या फिर ऑफिस, उसमें क्या करना है। और हमने देखा जितने कम कर्म हम चुप रह के करते हैं, सेवा कर रहे वही सेवा, एक सेवा करो बहुत बातें करते करते सेवा करो, दूसरी वही सेवा करो पूरा दिन चुप रहकर, तो जिस दिन चुप रहेंगे और सेवा कर रहे हैं और जितना आवश्यक है उतना ही बोल रहे, उस दिन की सेवा में और जिस दिन बोल रहे उस दिन की सेवा में बहुत अंतर है। क्योंकि जब चुप रहते तो निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर बढ़ जाता है, कहां क्या करना है वो ज्यादा पता चलता है। और थकान, जिस दिन ज्यादा बोला उस दिन थकान ज्यादा होती है, थकान वो कर्म नहीं थकाता है, हमारे अंदर जो व्यर्थ है और हमारे जो बोल है वो थकाते हैं हमेशा, नहीं तो कोई कितना भी सेवा कर सकता है बिना थके अगर चुप रह जाए तो। तो एक दूसरा ओ फॉर ओपननेस, सभी जो घर में जितने लोग है हर एक के जीवन में ओपननेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे सेवा केंद्र चाहे मधुबन, कुछ भी ऐसा ना हो कि छिपाने की जरूरत पड़े, जो है वो है, डर लगता है हमारा मोबाइल किसी के हाथ में गया तो सब देख लेगा, हमारा मैसेजेस देख लेगा, हमारे व्हाट्सएप देख लेगा, पासवर्ड डाल के रखा है उसमें भी पासवर्ड डाल के रखा है, किसी के हाथ में ना आ जाए, कोई खोले ना हाथ, पता चल गया कि हमारा मोबाइल गुम हो गया और किसी को मिल गया तो वो मोबाइल से ज्यादा वो टेंशन ज्यादा है कि उसमें जो है वो पढ़ लिया किसी ने, हमारे राज रहस्य उद्घाटन हो जाएंगे, पोल खुल जाएगी हमारी, उसका डर है क्यों। ओपन माइंड, ओपन बुक हो जाए, लेट अवर लाइफ बी अ ओपन बुक। नरेंद्र मोदी जी अभी कोई एक भाषण में कहा था ना उन्होंने, मेरे पास छिपाने का कुछ है ही नहीं, जो है वो पब्लिक है, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, खुली किताब है। अगला डी, डी फॉर डिसिप्लिन, एल, एल फॉर लव गैदरिंग, स्नेह मिलन, डी फॉर डिसिप्लिन, क्या हो डिसिप्लिन, अपना डिसिप्लिन एक तो हम खुद सेट करें, डिसिप्लिन्ड लाइफ हो, कभी भी उठ रहे, कभी भी जा रहे, कभी भी कुछ कर रहे, कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे, कोई उसका यही नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, हर चीज का टाइम टेबल हो। नेक्स्ट सी, क्लीनलीनेस, घर में भी क्लीन हो, किचन भी क्लीन हो, हर चीज क्लीन हो, ठीक है। ए फॉर अलौकिकता, डी फॉर, आर फॉर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में दो चीजें, मिठास और अनासक्ति, डिटैचमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, कहीं पर भी हम अटैच हो गए तो वो अटैचमेंट दुर्गंध को उत्पन्न करता है, हवा जैसे रहना, हवा कैसे घूमती रहती है, अगर उसी हवा को एक स्थान पर बंद कर दो तो फिर स्टफी एटमोस्फियर हो जाता है, दुर्गंध आती है, सड़ांध आती है वहां से। नेक्स्ट ए, ए फॉर एटमोस्फियर में क्या हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, एपीस हो, एप्रिसिएशन हो, पॉजिटिविटी हो, लव हो, सब कुछ हो, शुभ भावना, शुभ कामना हो, थैंकफुलनेस हो, प्रेज हो, मोटिवेशन हो, एक दूसरे को मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि वो आगे जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, उसको खींचना, वो काम नहीं करना है हमें। नेक्स्ट डी, डिस्क एन, एन फॉर न्यू सेल्फ प्रोग्रेस और न्यू सर्विस के प्लान, दोनों चीजें करनी है। डी फॉर डिस्कशन करना है, अपने घर में ज्ञान डिस्कशन चालू करना है, कौन कौन करेगा यहां से जाने के बाद, जो घर में रहते हैं वो दो लोग मिलके ज्ञान का डिस्कशन चालू करना है, अगर कोई भी नहीं है तो बच्चा तो होगा छोटा, अब ये भी तो कहा था बाबा ने, बच्चों को भी सिखाओ बाप को याद करो, नहीं तो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, वीडियो गेम, मोबाइल, आतंकवादियों का इंटरव्यू लिया गया था कुछ समय पहले, उनको पूछा था बचपन में कौन से गेम अच्छे लगते थे, वो कहते थे वीडियो गेम, यहां से मारा वहां से मारा, मारो काटो पीटो, ये कार इधर से आ रही है, कार उधर से आ रही है, तलवार लेके जा रहा है, ट्रैवल रन, वो कितने गेम्स है उसमें, क्या है उसमें, यही सारी चीजें दिखाते है, मारने की तो चीजें, इधर से मारा फिर वो छुप गया या कुछ किया, झुक गया, उसको मारो मारो पीटो काटो गिराओ, ये सारे शब्द है उसमें, यही जाकर, यही व्यक्ति जाकर आगे चल के वो बन गए। क्या करना है बच्चों के साथ, ज्ञान डिस्कशन, पूछो उनको प्रश्न तो वो बताएंगे, बहुत सेंसिटिव होते हैं वो, वही मार्ग है उनको ज्ञान मिलाने का, उनके साथ डिस्कशन, उनके साथ प्रश्न, ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई प्रश्न पूछा तो उसको छोड़ दो, बोलना हमें पता नहीं, कल दीदी से पूछ के बताएंगे आपको, क्योंकि उनके प्रश्न इतने फिलोसॉफिकल होते हैं, बड़ों के प्रश्न तो हमने देखा, हम जहां कहीं गए थे एक दो बार, दो बच्चे आ गए, हमको बात करनी है, दरवाजा बंद कर दिया और दोनों बैठे और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे, अरे बाप रे, हमने तो इस लास्ट में भी कभी चर्चा नहीं की ऐसे प्रश्नों की, हाई लेवल के प्रश्न थे उनके। नेक्स्ट ए कहा है, डी एब्सेंस, कौन कौन सी चीजें हमारे घर में आज चल रही है, हमारे सेंटर पे चल रही है, मधुबन में चल रही है, अपने सेवा के, अपने डिपार्टमेंट में, अपने महकमे में कौन सी चीजें चल रही है जो नहीं होनी चाहिए, उस पर चिंतन। टी तपस्या, एटलीस्ट दो बार सेंटर पर, मधुबन में 24 घंटे चल रही है, घर में अगर सारे ही ज्ञान में चलते हैं तो सारे एक साथ योग में बैठे अमृत वेला, और उसमें फायदा भी होगा, कोई कोई अमृत वेला कभी करता है कभी नहीं करता है, सब एक दूसरे को उठाए, कुछ भी करे पर एक दूसरे को उठाए और सब साथ में बैठे, तो वो वातावरण भी शक्तिशाली होगा। लास्ट माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, अलर्टनेस, सतर्कता, जागरूकता, चौकस, चौकन्ना होना, वह अवस्था। तो आज का होमवर्क है, वातावरण को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को पावरफुल, शक्तिशाली बनाना। ओम शांति।